जय राधमा भव कुंज बिहारे।
यह प्रवचन भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 8 पर 27 अक्टूबर 1982 को मुंबई में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
पारितराय साधूनां विनश्य च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं यही भावना से कि धर्म के नियमों की स्थापना हो। तो रामचंद्र जी के रूप में भी भगवान आए थे धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए। भगवान जो हैं वो जानते हैं कि हम सब जो कि उनके अभिन्न अंश हैं वो ये भौतिक जगत में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। जिस प्रकार एक पिता हमेशा जानता है कि बेटा घर रहकर ही खुश होएगा, उसी प्रकार हमारे परम पिता जो हैं वो भी जानते हैं कि केवल आध्यात्मिक कार्य में ही हम संतुष्ट रह सकते हैं। तो इस कारण भगवान बार बार अलग रूप में आते हैं ये धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए। तो रामचंद्र जी जब राज्य कर रहे थे उनको इतनी चिंता थी कि लोगों को कुछ दुख नहीं पहुंचे कि वो शाम के समय कोई सादा वस्त्र पहनकर चोरी चोरी लोगों से बात करते थे, पूछते थे कुछ सरकार के खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं है। आजकल की सरकार मुकाबले में जब उनको कुछ कोई दोष देता है तो वो उसको एकदम जेल में डाल देते हैं। पर रामचंद्र जी का जो राज्य था वो खुद जानने की कोशिश करते थे कि प्रजा का कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसकी कोई शिकायत है सरकार के विरोध। और रामचंद्र जी ने अपने जीवन में अनेक कार्य करे जो कि बिल्कुल दिव्य थे। जैसे कि सीता जी का हाथ पाने से पहले उन्होंने वो धनुष तोड़ा, जिस धनुष को उठाने के लिए 300 आदमियों की जरूरत थी वो धनुष को रामचंद्र जी ने उतनी सरलता के साथ तोड़ा जितनी सरलता के साथ एक हाथी एक गन्ने को तोड़ता है। तो पत्थर जो हनुमान ने फेंके थे, अक्सर पत्थर को जब समुन्द्र में फेंको तो वो नीचे डूब जाते हैं, पर रामचंद्र जी की इच्छा के अनुसार वो जो पत्थर थे वो डूबे नहीं पर वो पानी में तैर रहे थे। तो भगवान रामचंद्र जी जो थे वो परम भगवान है। और जो व्यक्ति ये समझ जाए कि भगवान का ये संसार में आना रहना जाना सब दिव्य है वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं विधि तत्वतः त्यक्त देहम पुनः जन्म नैतिमम इति सरोजना। कि जो व्यक्ति ये समझ जाए कि मेरा ये संसार से आना जाना बिल्कुल दिव्य है वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन का महत्व यह है कि हमें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करें। वेदांत सूत्र के बिल्कुल आरंभ में कहा गया है अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, ये मानव देह का उपयोग करो ये जिज्ञास करने के लिए कि आप कौन हो, किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो। जब तक हम इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश नहीं करें, जब तक हम ये मानव शरीर नहीं बिता रहे, तो ये जो वैदिक ग्रंथ हैं, ये वैदिक ग्रंथों का जो असली उपदेश है वो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज समाज की स्थिति इतनी खराब है कि रावणा की कोई कमी नहीं। रामचंद्र जी के समय में एक रावण था और उसके कई साथी थे, पर आजकल तो रावणा की कोई कमी नहीं। जिधर देखो उधर ही एक रावणा है, जिधर देखो उधर ही कोई है जो कि भगवान के नियमों का विरोध करने की कोशिश करता है। जिधर देखो वहीं कोई है जो कि ये कहता है कि परम भगवान है ही नहीं। जिधर देखो वहीं आपको कोई मिलता है जो कहता है मानव जीवन का महत्व है जानवर के समान निभाना। तो जिस प्रकार रामचंद्र जी ने रावण को सबक सिखाया, उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं आज, उनको भी ये जो आधुनिक युग के जो रावण हैं, उनकी आंखों को खोलना है। रावण ये सोच रहा था कि वो रामचंद्र जी को हरा देगा। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु सोच रहा था कि वो भगवान को मार देगा। प्रहलाद महाराज महान भक्त थे, प्रहलाद महाराज को 12 में से एक महाजन समझा जाता है। तो जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारे में ये सब शक्ति किधर से आ रही है, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने बड़ी कोशिश की कि प्रहलाद मारा जाए। प्रहलाद को जहर खिलाया, प्रहलाद को सांपों के बीच में रखा, प्रहलाद के ऊपर हाथी चले, पर क्योंकि प्रहलाद महाराज पर भगवान श्री कृष्ण की दया थी, उनको कोई हानि नहीं पहुंची। कहा गया है राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसको जिसकी रक्षा भगवान करना चाहें उनको कोई नहीं मार सकता, और जिनको मारना चाहें भगवान उनको कोई नहीं बचा सकता। तो प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान को याद कर रहे थे, और उनके पिता हिरण्यकशिपु थे, उनकी दिलचस्पी केवल दो कार्यों में थी, धन कमाने में और स्त्रियों की संगत में रहने के लिए। तो प्रहलाद महाराज जी में इतनी शक्ति थी कि हालांकि हिरण्यकशिपु ने पूरी कोशिश की उनको मारने के लिए, वो बिल्कुल मरे नहीं। तो हिरण्यकशिपु जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारे भगवान रहते किधर हैं। प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान तो हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार को बाहर निकाला और कहा ये खंभे में है क्या तुम्हारा भगवान। उसने कहा है, भगवान तो कण कण में है। माया दक्षिण प्रकृति सुयते सा चरा चरम, ये जो प्रकृति है ये मेरे इशारे से चल रही है। तो एक खंभे के बाद दूसरे खंभे में हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार रखी और पूछा एक खंभे में भी हैं तुम्हारे भगवान। लाने का हाँ है। फिर एक और खंभे में यहाँ है तुम्हारे भगवान। उन्होंने कहा है। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा अब भगवान मेरे पंजे में फंस गए हैं, है कि नहीं। जैसे आप किसी चोर के पीछे भागते हो तो कभी पुलिस वाला सोचता है आप ये चोर यहाँ से नहीं फिसलेगा। तो हिरण्यकशिपु ने भी सोचा अब भगवान मेरे हाथ में आ गए हैं, अब उनको मैं मारूंगा। तो उन्होंने जब अपनी तलवार से वो खंबे को काटने की कोशिश की, खंबे के अंदर से भगवान निकले और उन्होंने हिरण्यकश्यप को चीर दिया और भगवान निकले आधे शेर आधे आदमी के रूप में, क्योंकि हिरण्यकश्यप जी ने तपस्या उठाई थी जिसके द्वारा उन्होंने ब्रह्मा जी से ये वादा लिया था कि ना तो उनको कोई आदमी मारेगा ना कोई जानवर। उन्होंने ये भी वादा स्वीकार किया था कि ना तो वो पृथ्वी में मारे जाएंगे, ना पानी में, ना दिन के समय ना रात के समय। तो भगवान ने अपने भक्त ब्रह्मा के सारे वादों को पूरे रखते हुए भी उनको उनकी मृत्यु उनको मार दिया। खैर, भगवान से जो मारा जाता है वो तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई उन सब ने मुक्ति प्राप्त की, क्योंकि मृत्यु के समय उन सब ने भगवान के दर्शन किए थे। तो बात हम ये बता रहे हैं कि जो भगवान हैं वो कोने कोने में हैं, और भगवान जो हैं वो धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए आते हैं। प्रहलाद महाराज के द्वारा धर्म के नियम की स्थापना की, जबकि हिरण्यकश्यपु का राज्य चल रहा था, और जिस प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यपु को चीरा उसी प्रकार रामचंद्र जी ने रावण को ऐसा सबक सिखाया। तो अगर हम ये मानव जीवन के उपदेश को पूरा करना चाहते हैं तो हमें ये भगवान की जो दिव्य लीला है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो ये कहते हैं कि भगवान रामचंद्र परम भगवान नहीं थे वो शास्त्र को ठीक नहीं समझ रहे। भगवान रामचंद्र जी भी परम भगवान का रूप है, और आज जैसे शुभ दिवस पर हमें ये निश्चित करना चाहिए कि रामचंद्र जी का जो उपदेश था वो हम समझेंगे, उसके अनुसार ये जीवन को निभाएंगे। जैसे कि जब आपका जन्मदिन होता है तो आप कुछ निश्चित फैसले करते हो, हम ज्यादा मेहनत करेंगे। जो विद्यार्थी है वो ये सोचता है हम जरा पढ़ाई करेंगे ज्यादा मेहनत के साथ कि अच्छे नंबरों में पास होए। उसी प्रकार ये शुभ दिवस पर हमें रामचंद्र जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी दया से, उनकी आशीर्वाद से जो बुरे विचार हैं जो हमें उनसे दूर ले जा रहे हैं उनके ऊपर हमारी भी जीत होए, जिस प्रकार रामचंद्र जी की जीत रावण के ऊपर हुई थी। जैसे हमने कहा आज कलयुग में रावणों की कोई कमी नहीं है, पर अगर हम भगवान की शरण लें तो फिर ये रावण के ऊपर जितने भी रावण हैं उन सब के ऊपर हमारी जीत होगी। जो इंद्रियां हैं काम क्रोध मोह के प्रभाव के कारण वो हमेशा ये कहती रहती हैं चलो भगवान को भूलो, चलो जानवरों के कार्य करो। अगर आप जानवर के जीवन को अजमाओ तो ये देखोगे कि जानवर जो है अपना सारा समय खाने पीने प्रेम करने सोने में अपने आप को बचाने में निभा देता है, बिता देता है। अगर ये मानव ध्येय प्राप्त करके हम भी अपना सारा समय ऐसे कार्य में निभा देंगे तो हमारे में और जानवर में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य है कि धर्म के नियमों की को समझना, धर्म के नियमों का पालन करना, धर्म के जो नियम हैं उनका वर्णन शास्त्र में है। जैसे रामचंद्र जी की पूरी कथा वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखी है और ये कथा का संक्षेप शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को भी सुनाया था। परीक्षित महाराज जी जो थे बड़े महान राजा थे, पर उन्हें एक ब्राह्मण लड़के ने श्राप दिया था कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज अगर ये चाहते तो वो बड़ी आसानी से वो ब्राह्मण की एक श्राप का विरोध कर सकते थे, पर परीक्षित महाराज जी ने सोचा कि कार्य लगन से छुटकारा प्राप्त करने का ये अच्छा मौका है, चलो कार्य लगन से छुटकारा पाएंगे। तो वो नामशरण्य के वन में गए। ये नामशरण्य का वन लखनऊ के पास है। वहां उन्होंने इस देश के महान ऋषि मुनियों को बुलाया और उन्होंने सबसे ये प्रश्न पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु आने वाली है उसको क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज का एक और बड़ा भाग्य था। परीक्षित महाराज तो शुरू से ही भगवान के भक्त थे, शुरू से ही भगवान उनकी रक्षा करते आए थे। जब परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा के घर में थे तो अश्वत्थामा ने उन्हें मारने की कोशिश की, पर भगवान श्री कृष्ण खुद उनकी माता के घर में पहुंचे, अपने आप को उन्होंने वहां प्रकट किया और उन्होंने परीक्षित महाराज को उनके माता के घर में बचा दिया। तो परीक्षित महाराज जो थे वो तो शुरू से ही भगवान के भक्त थे और उन्होंने शुरू से ही आध्यात्मिक विचार हमेशा अपने सामने रखे। तो परीक्षित महाराज जी को का भाग्य ये था कि उनको 7 दिन का नोटिस मिला था कि आपकी मृत्यु 7 दिन के बाद आएगी। साधारण व्यक्ति को तो 7 सेकंड का भी नोटिस नहीं मिलता है कि नहीं। आपको और हमको तो 7 सेकंड पहले भी मौत यही कहती है भी हम आने वाले हैं आपके पास। जैसे कि आपके घर के अंदर कोई आदमी आता है तो दरवाजा खटखटा के आता है, पर मौत जो है आपसे पूछ के नहीं आती कि वो आए कि नहीं, ठीक है ना। बगैर कहे हुए ही मौत आपको उठा के ले जाती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये पहचानता है कि कदम कदम पर खतरा है। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये संदेश शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को दिया था, क्योंकि परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न पूछा था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसे क्या करना चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी भी थे और कई ऋषि मुनि थे, कईयों ने अलग अलग राय दी, पर शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा कि आपको कृष्णा के संबंधित कथा सुननी चाहिए। तो हर व्यक्ति जो है वो उसी स्थिति में है जिस स्थिति में परीक्षित महाराज थे। अंतर केवल इतना है, परीक्षित महाराज को 7 दिन का नोटिस मिला था पर हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, पर साथ में हमें ये भी पता है कि मृत्यु किसी समय भी आ सकती है। तो हम सबको तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार बारिश के मौसम में आप सब घर से जो निकलते हो छाता लेके निकलते हो, क्योंकि किसी समय भी बारिश आ सकती है। आप जब घर से निकलते हो थोड़ा पैसा जेब में रख के निकलते हो, रास्ते में किधर भी पैसे की जरूरत हो सकती है। उसी प्रकार हमें ये पहचान लेना चाहिए कि ये जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है और इस कारण हमें तैयार रहना चाहिए। अभी प्रश्न ये उठता है तैयार क्यों रहें, आप में से कोई ये कह सकता है तैयारी की क्या जरूरत, इंद्रिया तृप्ति करने दो, जानवर के समान, जानवर तो कोई तैयारी नहीं करते, जानवर तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं कुछ बोरी बिस्तरा उठाए बगैर, पर आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो आपको तो तैयारी करनी पड़ती है, तो 3 हफ्ते पहले तैयारी शुरू करते हो। अगर आप लोग ने अमेरिका जाना हो घूमने के लिए तो 6 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है, जब घर में किसी की शादी करानी हो तो भी तैयारी शुरू हो जाती है कई महीने पहले, ठीक है ना। हर एक चीज की तैयारी होती है, जब आपने कोई धंधा शुरू करना हो तो उसकी भी तैयारी करते हो कि धंधे में सफल हो बाद में, पर मृत्यु के बाद किधर जाना है उसकी कोई तैयारी नहीं है, समझना। हर एक चीज की हम तैयारी करते हैं पर मृत्यु के बाद क्या होएगा उसकी तैयारी हम नहीं करते। वो असंसार का दुर्भाग्य है कि ये ज्ञान बहुत कम व्यक्ति दे रहे हैं कि ये तैयारी किस रूप से करनी चाहिए। तो रामचंद्र जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने ये वैदिक ग्रंथों के द्वारा ये संदेश दिया है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक शरीर नाशवान है, भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, पर जो आत्मा है इसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये जो आत्मा है ये सनातन है, और जिस प्रकार इस बैठक में आप सब ने अलग अलग पोशाक पहने हैं उसी प्रकार अनेक प्रकार की योनियां हैं, और ये आत्मा कर्मों के अनुसार योनि प्राप्त करती है। अगर आप दिव्य कार्य करोगे तो बाद में पछताओगे नहीं, पर अगर आप शास्त्र के विपरीत कार्य करोगे तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। महाराज ऋषभदेव बहुत महान राजा थे, उन्होंने कहा नूनम प्रमता कुरु ते विकर्म यदिन्द्रिय प्रियतय अप्रणोति, कि जो व्यक्ति ये मानव शरीर प्राप्त करके शास्त्र के विपरीत काम करे, शास्त्र के विरोध काम करे, इंद्रिय तृप्ति में समय निभा दे, वो जो व्यक्ति है वो पागल है। तो जो असुरा भावना के व्यक्ति जो सुबह से रात परिश्रम करते हैं पर शास्त्र के विरोध कार्य कर रहे हैं वो पागल हैं, और जो व्यक्ति भगवान के नियमों के अनुसार ये जीवन को निभा रहे हैं वो हैं असली भाग्यशाली व्यक्ति, वो हैं असल में बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार ये नीच जीवन को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्र जो है वो हमें ये बताता है क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये देश की सरकार आपको ये नियम देती है क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो अच्छा सिटीजन है वो संसार वो सरकार के नियम के विरोध में कुछ काम नहीं करना चाहता। उसी प्रकार जो समझदार व्यक्ति है वो ये मानव देह का उपयोग करना चाहता है शास्त्र के नियमों के अनुसार निभाने के लिए, और शास्त्र के विपरीत कार्य करना जानवरों का कार्य है, मानव का कार्य नहीं है। तो ये वैदिक ग्रंथों का यही संदेश है कि यह मानव देह प्राप्त हुआ है इसका उपयोग करना चाहिए एक खूबसूरत अंत के लिए। खूबसूरत चीज का उपयोग खूबसूरत अंत के लिए होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो शरीर है जानवरों से ज्यादा खूबसूरत है, तो इसका अंत भी खूबसूरत होना चाहिए। जैसे कि एक विद्यार्थी कहता है कि वो पढ़ाई कर रहा है, माँ बाप कहते हैं ठीक है, देखेंगे कैसे पास करते हो इम्तिहान, है ना, कितना पढ़ाई किया है, इम्तिहान के समय पहचाना जाएगा। उसी प्रकार कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या कार्य हमने किया है, इस सब की परीक्षा होगी अंत में मृत्यु के समय। मृत्यु किसी समय भी आ सकती है किसी व्यक्ति के लिए भी। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा तैयार रहता है, और तैयार रहने का मतलब है वैसा कार्य करना जो भगवान चाहते हैं। अभी प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, किस रूप से वो भगवान के प्रति सेवा कर सकता है। सेवा करना कठिन नहीं है, कोई भौतिकवादी व्यक्ति की सेवा आप करोगे तो वो हमेशा आपको लूटने की कोशिश करेगा, हमेशा ये चाहेगा कि आपसे और कुछ मिले, और जितना हम देंगे उतना ही हम गरीब बनते जाएंगे। पर ये जो भक्ति की सेवा है, जितना आप दोगे उतने ज्यादा तंदुरुस्त बनते जाओगे, जितना आप भगवान को दोगे उतना ही ज्यादा आनंद प्राप्त करोगे। ये मत सोचो कि भगवान को देने से आप किसी रूप से गरीब बन जाओगे। एक बार एक औरत सेव बेच रही थी और वो भगवान कृष्ण के घर में आई। उसने देखा ये लड़का बड़ा खूबसूरत दिखता है, उसके तरफ वो बहुत आकर्षित हो गई थी। भगवान कृष्ण वो सेव चाह रहे थे, वो सोचने लगे कि अगर मैं ये सेव दे दूं तो फिर मैं गरीब बन जाऊंगी। जैसे हम सोचते हैं ना, भगवान के कुछ देंगे तो घर वाली के लिए साड़ी कैसे लाएंगे, घर में जो सामान चाहिए वो कैसे आएगा। तो हम हालांकि भगवान को दे सकते हैं, हम देते नहीं, हर एक चीज आ रही भगवान से है, पर जब भी भगवान की सेवा में कुछ लगाना नहीं चाहते। तो ये जो बुढ़ी औरत थी वो बड़ी आकर्षित हो गई थी। खैर उसने जब भी वो जो सेव थे भगवान को दे दिए। तो जब उसने अपनी टोकरी में वापस देखा तो सोने के सेव थे। तो मतलब ये है कि भगवान को देने से कोई गरीब नहीं बनता। भगवान आपका तन मांगते हैं, मन मांगते हैं, धन मांगते हैं। सर्वात्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, हम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ो और मेरे शरण में आओ, सब धर्मों को छोड़ो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, यह जो भगवान की वाणी है, ये जो भगवान की वाणी है इसमें असली शक्ति है। साधारण जीवन में हमें कोई मित्र कहता है तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हें बदले में ये करूंगा, हम उसमें विश्वास करते हैं। और जब भगवान कहते हैं तुम मेरे शरण में आओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो हम इस बात पर शक करते हैं। ये है कलयुग का दुर्भाग्य। तो हमारी आप सबसे ये निवेदन है कि कृपा करके आज जैसे शुभ दिवस पर, दशहरा के दिन, जिस दिन में भगवान रामचंद्र की जीत हुई रावण पर, आप सभी ये निश्चित करो कि आप सभी ये जो रावण के समान बुरे विचार जो आपके हृदय में बैठे हैं मैल के रूप में, उन सब पर आपकी भी जीत होगी। हरे कृष्ण।